खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। इससे पहले कि हम खुदा का अजीम कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग है, उसका कलाम जो हमारी तरबियत और नसीहत के लिए दिया गया है, उसका कलाम जो हमारे टूटे हुए दिलों को बहुत दफ़ा शफा देता है, उसका कलाम जो हमें इत्मीनान और तसल्ली देता है, उस कलाम को सुनेंगे। उसका कलाम जो हमें हौसला फजाई देता है, और उसका वाहद कलाम ही है जो हमें दुरुस्त राह पर लेकर जाता है। सो आए हम उस जिंदा खुदा से उसका कलाम मांगे, और हम सब खुदा के हुजूर झुक जाएंगे। आप सबको ये एजाज, आप सबको ये हक, आप सबको ये कुदरत, आप सबको ये इख्तियार खुदा ए सलूस की तरफ से हासिल है कि आप जब चाहें उससे बातचीत कर सकते हैं। सो आए हम खुदा से बातचीत करें, अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को, अपने जोर को, अपनी हिकमत और दनाई को खुदावंद खुदा के हजूर देंगे, ताकि उससे सीखने वाले बने। खुदा बाप, आए हुए तमाम बहन भाइयों के लिए तेरा शुक्र हो, मुल्क पाकिस्तान में सारे वक्त के लिए जो तूने खुदावन हम सबको बख्शा है कि तेरे हजूर झुकें। आज के कलाम के वसीला से जो भेद, जो सच्चाइयाँ, जो हकीकी बातें अपनी तरबियत और नसीहत के लिए सीखें, हम सबको समझने की, और ख़ास कर मेरी मिन्नत है खुदावन खुदा, तेरे कलाम की सच्चाइयों को, वादों को, बातों को कबूल करने की और उस पर यकीन करने की कुव्वत और ताकत दे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमेन। आए हम मेरे आप आए हम सब उस हवाला को निकालें जो हम इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका पहला बाप, उसकी 17वीं आयत से सीख रहे हैं। हमने कल के दिन में, जो दिन गुजर गया है, उसमें हमने सीखा था कि हमें खुदावंद यीशु मसीह में क्या कुछ हासिल है, और आज हम इस खत में से पालूस के वसीला से उन बातों को सीखेंगे जो कि बहुत ही अहम हैं। और 15वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक पालूस रसूल ये एक लंबी बात करता है। वो इस गुफ्तगू में ईमानदारों के लिए दुआ करता है, इल्तिजा करता है, और उसकी दरख्वास्त है खुदा के हजूर के ईमानदार समझ जाएं, ईमानदारों को हिकमत और दनाई हासिल हो, उनको पता चल जाए, उनको मालूम हो जाए कि वो कौन हैं, उन्हें क्या कुछ हासिल है, उनका हक क्या है। तो आज हम 17वीं आयत को पढ़ेंगे। ये पालूस रसूल की दुआ है ईमानदारों के लिए जो इफ्सस में हैं। आज मेरी और आज मेरे लिए, आपके लिए भी ये खुदावंद के कलाम में से दुआ है कि हम भी उन गहराई की, सच्चाई की बातों को जानें, ताकि हम इस ज़मीन पर उस कसरत की ज़िंदगी को गुजारने वाले बने जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस चोर इसलिए आता है कि मार डालने और चुराने, लेकिन मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। हमेशा की जिंदगी हमें हासिल है, लेकिन जो जमीन पर जिंदगी हासिल है, फतामंद जिंदगी, यीशु मसीह चाहता है, पालूस चाहता है, खुदा चाहता है कि हम उसे गुजारें। सो 17वीं आयत में पालूस कहता है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा, जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मकाशफा की रूह बख्शे। पालूस रसूल यहाँ पर सिखाना चाहता है कि यीशु मसीह के साथ हमारा जो रिश्ता है, यीशु मसीह जो हमारा दरमियानी है, यीशु मसीह है वो, जब हम खुदा से दूर थे तो वो आसमान और जमीन के दरमियान सलीब पर लटकाया गया, और उसने हमारा रास्ता खुदा तक बनाया, जो जलाल का बाप है, जिसका जलाल जब जाहिर होता है, जब वो अपने आप को आश्कारा करता है तो पहाड़ों के सीने फट जाते हैं। जो अपने जलाल में आता है तो उसका जलाल बयान से बाहर है, वो पाक खुदा है। और पालूस कहता है कि यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, जो हमारा भी बाप है, जो हमारा भी खुदा है, वो चाहता है कि हमें ये समझ आ जाए कि हम यीशु मसीह में कौन हैं, हमें कौन सी हिकमत और मकाशफा की बातें और कुदरत हासिल है। तो हमने पिछले दिनों में सीखा कि आप काहिन हैं। आज मैं चाहूंगा कि इसी बात पर, इसी मौजू पर, इसी तल्लक से, इसी वादशाह से बात की जाए कि काहिन कौन है, उसका काम क्या था, उसका पेशा क्या था। काहिन का मतलब पादरी भी कहा जाता है इसे, पेशवा भी कहा जाता है, खादमुद्दीन भी खादम कहा जाता है इसे। हिंदू लोग इसे पुजारी कहते हैं, यहूदी लोग काहिन का नाम कहते हैं, काहिन कहते हैं। हमारे मुल्क में मुस्लिम लोग इसे क्या कहते हैं? अमाम कहते हैं। और हम मसीही क्या कहते हैं? पेशवा या प्रस्तुत करने वाला, या खुदावंद के हुजूर नजरों को गुजरानने वाला। तो आज मैं चाहता हूं कि हम जाने के काहिन कौन था, उसका काम क्या था। मेरे साथ इस हवाला को निकालें, क्योंकि ये हक हम सबको हासिल है। और मैं चाहता हूं आज आप जब अपने घर में जाएं तो अपनी हैसियत से, अपनी असलियत से, अपनी शिनाखत से, अपने मुकाम से, अपने उस दर्जा से कि आप बहुत कुछ हैं खुदा के उस फजल के बायस, ना के अपनी किसी खूबी के बायस। तो मेरे साथ एक हवाला निकालें, लूका की अंजील उसका पहला बाप उसकी 8वीं आयत पढ़ेंगे। यहां पर अलिशबा को जो मरियम की खालाजाद बहन थी, और उसका खावन जो जिक्रिया था, जिक्रिया को देखेंगे कि काहिन की जिंदगी में काहिन का काम क्या था, कि वो क्या करता था। तो यहां पर हम देखेंगे लूका की अंजील उसका पहला बाप उसकी 8वीं आयत में यूं लिखा है। आप सबको याद होगा कि हलिशबा के जब वो पेट से थी, जब वो हामला हुई, तो खुदावन खुदा ने उससे क्या किया? पैगाम दिया कि तू ते तुझसे बेटा पैदा होगा, तू उसका नाम उसका उसके बाप को उसके नाम उसके बाप को उसका नाम बताया गया कि यूहन्ना होगा। सो मैं चाहता हूं आज इस पर गौर करें। 8वीं आयत में लिखा है, जब वो खुदा के हजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था तो ऐसा हुआ। ये किसके बारे में बात हो रही है? जिक्रिया के बारे में। जिक्रिया के बारे में कि जब वो खुदा के हजूर काहिन के तौर पर खिदमत कर रहा था, और यहूदी रिवाज के मुताबिक 24 काहिन होते थे जो सारा साल दो दो हफ्ते हैकल में खिदमत करते थे। और जिक्रिया अपने फरीक की बारी पर, यानी के उन ग्रुप के लोगों पे लोगों के साथ जो पहले काम कर रहे थे, उनके साथ जब उसका वक्त आया तो उसने क्या किया? खुदा के हजूर अपनी खिदमत को अंजाम देना शुरू किया। और नावी आयत में क्या लिखा है? कहानत के दस्तूर के मुआफिक, यानी के काहिनों का जो रिवाज था, दस्तूर था, तरीका कार था, उसके मुताबिक उसके नाम का कुरा निकला। कुरे से मुराद जैसे हम नंबरों की पर्चियां डालते हैं, कोई 5 रुपए की, कोई 10 रुपए की, जिसे लॉटरी कहा जाता है, और वो नाम हासिल करता है, वैसे ही उसके नाम की पर्ची निकली कि खुदावन के मकदस में जाकर खुशबू जलाए। ये काहिन की उस वक्त खिदमत थी कि वो जाकर खुदा के हजूर उसके खुशबू जलाए, खुदा के हजूर जाकर उसकी खिदमत करे, उसके हजूर हाजिर हो। और यहाँ पर गौर करें, काहन ही वाहद था उस दौर में जो खुदा के हजूर जाता था, खुदा से बातचीत करता था, खुदा के हजूर नजराने, हदिये, शुक्रगुजारियां और खुशबू जलाता था, और खुशबू खुदा को खुश करती थी। इसलिए जिक्रिया खुदा के हजूर क्या करता है, खुशबू जलाता है। और 10वीं आयत में क्या लिखा है, और लोगों की सारी जमायत खुशबू जलाने जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी। यहाँ पर हम तस्वीर देख सकते हैं कि पुराने अहदनामा के मुताबिक सिर्फ काहिन को ये हक हासिल था कि खुदा के हजूर जाकर दुआ करे, खुदा के हजूर जाकर खुशबू जलाए, खुदा के हजूर जाकर कुर्बानी को चढ़ाए, खुदा के हजूर जाकर नजरों को पेश करे। बाकी तमाम लोग बाहर इंतजार करते थे। जब काहिन वापस आता था तो लोग उससे पूछते थे कि तुझे क्या पैगाम मिला है। आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं, घर जाकर लोग जिक्रिया से भी पूछेंगे कि क्या मिला है तुझे कलाम में, क्या तुझ पर फरिश्ता जाहर हुआ है, कौन सी बात तुझे मिली है। तो काहिन का काम क्या था, खुदा के हुजूर नजरें पेश करना, खुशबू चढ़ाना और दूसरी मसाला, खुशबूदार मसाला चीजों को जलाना जो खुदा को पसंदीदा थी। और लोग बाहर रहते थे। मेरे साथ एक और हवाला देखें, मत्ती की इंजील उसका 8वां बाप। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहा है। यीशु मसीह ने यहाँ पर एक कोढ़ी को शफा दी है। मत्ती की इंजील 8 बाप उसकी पहली आयत में लिखा है, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली। यहाँ पर क्या बात हो रही है, यीशु मसीह यहाँ पर जो पहाड़ी वाज की बात हो रही है, यीशु मसीह पहाड़ पर बैठा हुआ है 5वें बाप के मुताबिक, और बहुत सी भीड़ उसके पास आई। और दूसरी आयत में लिखा है, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावन अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। और तीसरी आयत में क्या लिखा है, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जाए। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। वो कोढ़ी फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया, उसी वक्त उसका कोढ़ जाता रहा। यहाँ पर यीशु मसीह ने उसके कोढ़ से शिफा दी है। और आपको याद होगा मैंने सिखाया है कि कोढ़ी जब कोई होता था वो शहर में नहीं रहता था, उसे शहर से बाहर रखते थे। उस दौर में शहर के इर्द गिर्द दीवार हुआ करती थी और जो कोढ़ की बीमारी में होता था उसे शहर में रहने नहीं देते थे, बल्कि उसके घर उसके हाथ में या गले में एक घंटी होती थी। जब भी लोग उसके इर्द गिर्द आते वो घंटी खड़का के कहता कि मैं नापाक हूँ, मैं नापाक हूँ, लोग उससे दूर हो जाते थे। तो ये कोढ़ी खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह ने उसे शिफा दी। और यीशु मसीह ने 4वीं आयत में क्या कहा, यीशु ने उससे कहा, खबरदार किसी से ना कहना, बल्कि अपने तहीं जाकर काहिन को दिखा और जो नजर मूसा ने मुकरर की है उसे गुजरान ताकि उनके लिए गवाही हो। काहिन का एक और पेशा था, अगर कोई कोढ़ी या बीमार या किसी तरह की बीमारी में मुश्किल में होता था, जब वो शफा पा जाता था तो काहिन का काम था कि उसे चेक करे, काहिन का काम था उसका मुआयना करे, उसे परखे। और यहाँ पर क्या किया काहिन ने, यीशु मसीह ने कहा कि काहिन के पास जा ताकि तू अपनी नजर खुदा के हजूर गुजरानने वाला बने जो मूसा के मुताबिक है। इन दो हवाला जात का आपके साथ बातचीत करने का मकसद ये है कि काहिन उस दौर में सिर्फ खुदा के हजूर जाता था, लेकिन आज आप सब यीशु मसीह में ये हक रखते हैं कि आप उसके हजूर जब चाहें जा सकते हैं। आपको हैकल के बाहर ही खड़े रहने की जरूरत नहीं, आपको उससे दूर रहने की जरूरत ही नहीं, ना कि सिर्फ पादरी ने या काहिन ने ही आपके लिए आगे जाना है, आप भी खुदा से जब चाहें बातचीत कर सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा। मेरे साथ एक और हवाला देखें और हम इस पर खत्म करेंगे, यूहन्ना की इंजील 4 बाप। यहां पर यीशु मसीह उस सामरी औरत से बात कर रहा है। ये सामरी लोग भी अलहदा किए हुए थे, यहूदियों की नजर में नापाक थे, कम, बहुत नीचे दर्जे के लोग थे। तो यहां पर यीशु मसीह बातचीत कर रहा है। यीशु मसीह उस औरत को जब सच बताता है तो वो औरत कहती है कि क्या तू नबी है। तो यीशु मसीह उसे बताता है कि तुम्हारे बाप दादा इस पहाड़ पर प्रस्तुत करते हैं और हम यरूशलेम में प्रस्तुत करते हैं। 22वीं आयत में देखें, जिसे तुम नहीं जानते उसकी प्रस्तुत करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। 24वीं 23वीं आयत पर गौर करें, मगर वक्त आता है बल्कि अब ही है कि सच्चे प्रस्तार बाप की प्रस्तुत शुरू और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्ताव ढूंढता है। आज आप सबको ये हक हासिल है कि आप यीशु मसीह के वसीला से खुदा के हजूर जा सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं। आपको अपने गले में घंटी बांधने की जरूरत नहीं, आपको अपने वक्त का इंतजार करने की जरूरत नहीं कि या आपको मेरा या भाई ताहर या किसी और पादरी साहब का इंतजार करने की जरूरत नहीं कि वो आपके लिए दुआ करे। हम सब खुदा के हजूर दलेरी के साथ जा सकते हैं जब चाहें। और क्या लिखा है, खुदा ऐसे ही प्रस्ताव ढूंढता है, खुदा ऐसे ही दुआ करने वाले, खुदा ऐसे ही पुजारी, खुदा ऐसे ही लोग ढूंढता है, क्योंकि खुदा रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्ताव उसकी प्रस्ताव शुरू और सच्चाई से करें। इसलिए आप सब क्या हैं, काहिन हैं, पुराने अहदनामा के काहिन नहीं बल्कि नए अहदनामा के काहिन। काहिन का मतलब खुदा के हजूर जाने वाला, खुदा से बातचीत करने वाला, उसके हजूर अपनी नजरें, हदिया, शुक्रगुजारी पेश करने वाला। क्या आप इस बात का यकीन करते हैं कि खुदा की तरफ से आपको ये हक हासिल है? खुदावंद यीशु मसीह की ये दुआ है कि तुम सच्चाई से वाकिफ हो। पालूस रसूल की दुआ है कि तुम रूह कुद्दस के उन मकाशफात को हासिल करो, और ये उसमें से एक मकाशफा है, एक सच्चाई है कि आप यीशु मसीह में उसके अहम बेटे और बेटियां हो, और आप जब चाहें खुदा से बात कर सकते हैं। क्या आप इस बात का यकीन करते हैं? या फिर हम जैसे जिक्रिया के दौर में, जिक्रिया गया है खुदा के हजूर और भाई फैसल दुआ कर रहे हैं, हमें सिर्फ उनके साथ भेड़ों की तरह सर हिलाने की जरूरत है? नहीं, आप जब भी चाहें अपने बिस्तर पर, घर में, किचन में, काम पर, गली में, बाजार में, कोठे पर, हर जगह पर आप खुदा से बात कर सकते हैं, क्योंकि वो रूह है और हर जगह मौजूद है। आपको यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं, खुदा आपके दरमियान अभी मौजूद है, खुदा आपके अंदर रहता है। इसलिए मेरे साथ इस आयत को कहें और हम खत्म करेंगे कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मकाशफा की रूह बख्शे। यीशु मसीह में हमें हर रोज अपनी पहचान, अपनी हैसियत, अपनी शिनाख्त, अपनी असलियत को थामे रहने की और उस पर यकीन करने की जरूरत है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आगे चलकर हम देखेंगे और सच्चाइयों को, आए हम खुदा के जुड़ चुके हैं। आप खुदा से जब चाहे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खुदा बाप आज के कलाम के वसीला से सुनने वालों को बड़ी बरकत दे, ताकि हर एक यहाँ पर जो मौजूद है इस बात पर यकीन करे कि हमें तुझ तक पहुँचने की कुदरत और इख्तियार हासिल है, और जब चाहे तुझसे बातचीत कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।